नमस्कार भारत, शनिवार 4 फरवरी, आज आपके साथ निखिल रंजन। मिसाइल परीक्षण के बाद ईरान पर अमेरिका ने किया नए प्रतिबंधों का ऐलान।
Today's sanctions really represent a very, very strong stand against the actions that Iran has been taking.
भारत के पंजाब और गोवा में आज होंगे विधानसभा चुनाव। पंजाब में त्रिकोणीय तो गोवा में चौतरफा है मुकाबला। पाकिस्तान के सैनिक शासक याहिया खान की जन्म शताब्दी पर उन्हें याद करेंगे आज रेहान फजल विवेचना में।
इतनी बड़ी जंग में किसी एक महाज पर वक्ती तौर पर पीछे हटने का ये मतलब हर किस नहीं है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है।
अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अभी अभी मिल रही खबरों के अनुसार सिएटल की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 7 मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिका आने वालों पर पाबंदी लगाने वाले आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत का यह आदेश पूरे अमेरिका पर लागू होगा। अदालत का कहना है कि लोगों पर लगी पाबंदी को तुरंत हटाया जाना चाहिए और इस बीच मामले की सुनवाई जारी रहेगी। अमेरिका ने ईरान पर हाल में किए बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के बाद नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ईरान चरमपंथियों की मदद कर रहा है। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि वो उन अमेरिकी व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा जिन पर स्थानीय चरमपंथी समूहों के साथ संबंध होने के आरोप हैं। भारत के 2 राज्यों पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान होगा। जहां पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, गोवा में 40 सीटों के लिए प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में कैद हो जाएगा। वोटों की गिनती 11 मार्च को होगी। रोमानिया में लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार उस फरमान को वापस ले जिसके तहत कुछ तरह के भ्रष्टाचार को मान्यता मिल जाएगी। अगले सप्ताह लागू होने वाले इस आदेश के अनुसार $48,000 तक का भ्रष्टाचार करने वालों को जेल की सजा नहीं होगी। साल 1989 में साम्यवादी सरकार के पतन के बाद देश में यह अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है।
We are here for our children to live in a free country, a country without corruption, and to have a better future, of course.
We do not stop the fight against corruption.
हम यहाँ अपने बच्चों के लिए आए हैं ताकि हम एक आजाद देश में रह सकें, एक देश जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, हमारे अपने भविष्य के लिए। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं बंद करेंगे और हम इसके लिए आसान भी नहीं होने देंगे। हम उन्हें हमारे साथ ऐसा करने का मौका नहीं देंगे। ये तो हमारा प्राप्य नहीं। हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इससे बेहतर के हकदार हैं। ये थे प्रदर्शनकारी लॉरा और क्रिस्टी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त का कहना है कि म्यांमार की नेता आंग सान सूची ने वादा किया है कि वो सेना पर संयुक्त राष्ट्र के लगाए आरोपों की जांच करेंगी। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार की सेना पर अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के बच्चों और बड़ों की सामूहिक हत्या और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये हिंसा मानवता के खिलाफ अपराध और जातीय शुद्धता के नाम पर लोगों को खत्म करने की कोशिश हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविल ने बीबीसी को बताया।
She seemed to take this report very seriously. She asked for our help in investigating further.
ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। उन्होंने आगे इसकी जांच के लिए हमारी सहायता मांगी है। ये खौफनाक अपराध हैं और किसी को इनके लिए जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये अपराध रुके। उच्चायुक्त ने आंग सान सू ची से गुजारिश की है कि वो अपनी पूरी नैतिक और राजनीतिक अधिकारों का इस्तेमाल करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि म्यांमार की सेना, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल इसे रोकें। ये थे संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविल के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2008 की महामंदी के बाद देश में लागू हुए सबसे प्रमुख अधिनियम की समीक्षा का हुक्म दे दिया है। डॉड फ्रैंक एक्ट ने अमरीकी बैंकों को अपने ग्राहकों की बजाय अपने फायदे के लिए वित्तीय बाजारों पर सट्टेबाजी करने से रोक लगा दी थी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो पर शनिवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ईरान आग से खेल रहा है। ओबामा प्रशासन उनके देश के प्रति कितना उदार था वो इसका महत्व नहीं समझते, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। इस ट्वीट की भाषा से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को साफ साफ चेतावनी दी है। ईरान ने पिछले दिनों एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, तो क्या हुआ उसके बाद, सुना रही हैं मानसी दास।
ईरान ने हाल में बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किए थे, जिसके बाद अमरीका ने उस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमरीकी प्रशासन का कहना है कि ईरान चरमपंथियों की मदद कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार किसी देश पर लगे इन प्रतिबंधों के तहत 12 कंपनियों के साथ ईरान और दूसरे देश में रह रहे 13 लोगों को निशाना बनाया गया है। इसी मामले में एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा, ईरान आग से खेल रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने कहा है कि इस कदम से यह साफ हो गया है कि ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ बीते साल जो परमाणु संधि की थी वो देश हित में नहीं थी।
Today's sanctions really represent a very, very strong stand against the actions that Iran has been taking.
आज लगाए गए प्रतिबंध ईरान जो कर रहा है उसके खिलाफ बेहद मजबूत कदम है। ये इस बात का संकेत है कि पहले ईरान के साथ जो परमाणु संधि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान हुई थी वो देश हित में नहीं थी, और राष्ट्रपति ट्रंप वो हर कदम उठाएंगे जिससे ईरान अपनी सीमा में रहे। ये थे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर के शब्द। लेकिन ईरान इस मामले में चुप नहीं बैठा है। ट्रंप के ट्वीट के उत्तर में ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, अमेरिका पर खतरे से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता और ईरान कभी भी पहले युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन ईरान अपनी सुरक्षा के लिए अपने बनाए हथियारों पर ही यकीन कर सकता है। इससे पहले ईरान की संसद में स्पीकर अली लाजिरानी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ईरान की कोशिशें अन्य बड़े देश से बेहतर हैं जो बचपना दिखा रहे हैं।
پس از 7-8 سال وزانت ایران و ملت ایران خام ماند از یک پختگی در رفتار
آج ہماری سرکار स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राजनीतिक व्यवहार में परिपक्व है और सोच विचार कर फैसले ले रही है, जो महत्वपूर्ण बात है। इसके मुकाबले कुछ देश बचकाना बातें कर रहे हैं। जिस तरह से ये देश खुद को पेश कर रहे हैं उनमें बचपना साफ दिख रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा है कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो उस संयुक्त राष्ट्र समर्थित समझौते का उल्लंघन है जिसके तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने पर राजी हुआ था। ईरान का कहना है कि अमेरिका के प्रतिबंधों के उत्तर में वो उन अमरीकी व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा जिन पर स्थानीय चरमपंथी समूहों के साथ संबंध होने के आरोप हैं।
ये थी मानसी दास जो सुना रही थी रिपोर्ट। और जैसा कि समाचारों में शुरू में ही हमने ये जिक्र किया था कि अमेरिका के एक जज ने उस राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर रोक लगा दी है पूरे देश भर में, जिसमें 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिका आने पर रोक लगाई गई थी। इस वक्त हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़ रहे हैं ब्रजेश उपाध्याय, उनसे पूछते हैं इस मामले में उनके पास क्या ज़्यादा जानकारी है। ब्रजेश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या है ये आदेश और क्या कहा गया है इसमें?
निखिल, बहुत आरंभिक जानकारी है इस वक्त, और ये वॉशिंगटन राज्य में एक संघीय जज ने ये फैसला सुनाया है, और उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन राज्य ने ये साबित किया है कि इस फैसले से देश को काफी खासा नुकसान होगा और इसलिए वो इस पर रोक लगा रहे हैं। और स्थानीय मीडिया के अनुसार जो राज्य के अटॉर्नी जनरल ने ये केस फाइल किया था, तो आप समझ सकते हैं कि संघ के खिलाफ जाकर के एक तरह से राज्य ने ये केस दायर किया था, और उनका ये कहना है जो अटॉर्नी जनरल है कि ये पूरे देश पे लागू होता है, सिर्फ वॉशिंगटन राज्य पर नहीं। देखा है, अगर ये बात सही है तो ये अब तक का ट्रंप के फैसले का की सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर आलोचना कह लें या कानूनी तौर पर जो रोक है वो लगी है। लेकिन फिलहाल अभी व्हाइट हाउस की तरफ से और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, हम उसका इंतजार करेंगे, और इसका जज का जो लिखित आदेश है वो देखने की जरूरत होगी। और साथ ही उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये आदेश जो है उन लोगों पर भी लागू होगा, उन 7 देशों पर जो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ यहाँ वालों का वीजा कैंसिल करने पर लागू नहीं होगा। तो ये अगर सही मायने में लागू होता है तो ये बड़ी बात होगी, लेकिन अभी हम फिलहाल उनके लिखित आदेश का इंतजार करेंगे जिससे कि हम समझ सकें कि क्या सही फैसला क्या है। ये बहुत आरंभिक फैसला है इस वक्त।
जी ब्रजेश उपाध्याय वॉशिंगटन से, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। और आइए अब रुख करते हैं भारत से कुछ खबरों का। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। 117 सीटों वाली विधानसभा के लिए पंजाब में त्रिकोणीय मुकाबला है। 10 साल से सत्ता पर काबिज प्रकाश सिंह बादल की शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मोर्चे पर है, साथ में बीजेपी भी। ड्रग्स, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी इस बार पंजाब के चुनाव में मुख्य मुद्दे बनकर उभरे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। इसके अलावा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू भी अमृतसर से किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती प्रकाश सिंह बादल के लिए है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी अपना असर दिखाएगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन हमारे साथ फोन पर हैं। रविंदर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए कि चुनाव की जो तैयारियां हैं वो क्या पूरी हो चुकी हैं और कितने देर में जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी?
जी निखिल, पंजाब लगभग, मैं कहूँ कि पूरी तरह से, लगभग नहीं, पूरी तरह से तैयार है। जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बता रहे हैं कि पंजाब में इस वक्त 2 लाख के करीब एम्प्लॉय और 1 लाख के करीब पुलिस एम्प्लॉय भी डिप्लॉय किए गए हैं ताकि फ्री फेयर इलेक्शन करवाए जा सके। सेंसिटिव बूथ और सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो डिक्लेयर की गई है, 23 के करीब वो है और 800 के करीब क्रिटिकल पोलिंग बूथ है। पंजाब में इलेक्शन इस बार जो है वो त्रिकोणीय है और इसलिए इलेक्शन कैंपेन भी बहुत ज्यादा देखने को मिली और इन्वॉल्वमेंट लोगों की कुछ ज्यादा हुई, तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उतनी तरीके से, उतनी तेज तरीके से, मैं कहूँगा इसमें सजग रहा है। और जो इलेक्ट्रॉनिक और स्पेशली फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम में भी वो जुड़े हैं यंग वोटर्स को लुभाने के लिए, उनको बताने के लिए कि आज इलेक्शन है और आपने उसमें वोट कास्ट करने जाना है।
जी रविंद्र, मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा था कि इस बार का चुनाव कहा जा रहा है कि कुछ अलग मुद्दों पर लड़ा गया है जो आमतौर पर पंजाब में ऐसा होता नहीं है, क्या क्या है मुद्दे, जरा आप थोड़ा सा बता सके?
देखिए, जो एक तो 10 साल हो गए हैं सरकार को, तो मैं कहूँगा एंटी कम्बेसी इनकम्बेसी जो है डबल हो गई है इस बार। और जो जितने पंजाब अब तक 2 पार्टियों के साथ इलेक्शन लड़ता रहा है ट्रेडिशनल तौर पे, वो है कांग्रेस या अकाली दल बीजेपी का गठबंधन, लेकिन इस बार जो तीसरा ऑप्शन जो लोगों को मिला है वो बहुत स्ट्रांगली मिला है, वो है आम आदमी पार्टी का। उसके आने से लोगों में, जैसे जो दिल्ली के, जैसे दिल्ली में वो लगाए थे, उसके बाद पंजाब में उनकी आमद बहुत जोरदार तरीके से रही और उनके सिंबल का हर बंदे को पता लग गया, गांव और झाड़ू का मतलब आम आदमी पार्टी है। और जिस तरीके से मुद्दे शुरू हुए पंजाब में करप्शन के या अनएम्प्लॉयमेंट के या फार्मर्स के, जो बॉर्डर पर 30 लाख के करीब पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लोग रहते हैं उनके इशू, लेकिन इस बार वो सब हटकर वो धीरे धीरे इशू और तरीके से बनते हुए अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर आम आदमी पार्टी के ऊपर अटैक करने शुरू किए। और जहां से मुद्दे अनएम्प्लॉयमेंट की शुरू हुए, अंतिम दिन में जब बंद हो गई थी कैंपेनिंग, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को चरमपंथियों के साथ जोड़ा, इस तरह के मुद्दे पर आकर खत्म की। और ये कहा कि अगर पंजाब में, अकाली दल और कांग्रेस ने कहा कि पंजाब में अगर स्टेबिलिटी चाहिए और पीस चाहिए, कम्युनल हार्मनी चाहिए, तो उनकी अकाली दल रविंदर
जी जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास अपने अगले कार्यक्रमों में भी आपसे बात करेंगे। और भारत के, ये तो पंजाब की बात थी, रविंदर सिंह रॉबिन जानकारी दे रहे थे, लेकिन भारत के सबसे छोटे राज्यों में गोवा में भी आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 40 विधानसभा सीटों के लिए 250 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। गोवा के मतदाताओं में 51% महिलाएं हैं और 44% युवा हैं। सत्तारूढ़ भाजपा को कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी की तरफ से चुनौती मिल रही है। आम आदमी पार्टी सभी 40 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रही है, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोवा में पूर्व संघचालक ने गोवा सुरक्षा मंच के नाम से नई पार्टी बनाई है। इन चुनावों को मुख्यमंत्री रहे पहले मनोहर पर्रिकर की साख के सवाल के तौर पर भी देखा जा रहा है। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने गोवा में वरिष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई से बात की और पूछा कि क्या बीजेपी वापसी कर पाएगी।
ये तो सच है कि भाजपा के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो महत्वपूर्ण भागता, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये राष्ट्रीय संघ पूरे आरएसएस लोगों ने भाजपा के खिलाफ एक रेबेलियन जैसा उठाव जैसा किया है, और वो वहां से बाहर आके उन्होंने दूसरी पार्टी जो पहले भाजपा के साथ थी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, वो भी वहां से बाहर आई है और उन्होंने गठबंधन बनाया है और उनका उनके बीच में मुकाबला होगा। तो इसके वास्ते जरा भाजपा को लग रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी बात जो ऐसी है कि कांग्रेस जो अगले 5 वर्ष में उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस अभी उभर के आई है, एक बड़ी पार्टी थी पहले, उन्होंने पहले सत्ता पे भी थी, वो आई है और आम आदमी पार्टी भी है। तो ऐसा मुकाबला होगा कि एक बाजू में भाजपा और उनके खिलाफ भारतीय अपना भारतीय जनता पार्टी की जो आरएसएस थी और उनका जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी उनका गठबंधन, और दूसरी बाजू से कांग्रेस के खिलाफ आप, ऐसी है फोर कॉर्नर फाइट होगी।
आम आदमी पार्टी ने काफी अपना जोर लगाया है और एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया है एल्विस कोम्स को, आम आदमी पार्टी के क्या चांसेस दिख रहे हैं?
देखो क्या हुआ है, गोवा में सबसे पहले जो काम शुरू किया वो आम आदमी पार्टी ने किया, लगभग मुझे लगता है कि 6 महीने से पहले उन्होंने काम शुरू किया था और बहुत युवक थे, बाकी सोशल एक्टिविस्ट थे और बाकी जो प्रोफेशनल्स थे वो सब आम आदमी पार्टी में आ गए, एक नई नजर से आम आदमी पार्टी को देखा गया।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार गोवा के संदेश प्रभुदेसाई और उनसे बात कर रही थी हरिता कांडपाल। गोवा में भी आज चुनाव होना है और आइए अब जरा अखबारों की सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। मानसी दास आ चुकी हैं स्टूडियो में। जी मानसी,
शुरू करती हूँ जनसत्ता में छपे इरफान के कार्टून से, जो है मेरठ में अमित शाह की अपनी पदयात्रा रद्द करने के बारे में। कार्टून में अमित शाह हेलीकॉप्टर की तरफ देख रहे हैं और उनसे एक नेता कह रहे हैं पदयात्रा करें आपके दुश्मन। अखबार के पहले पन्ने की बड़ी खबर के बारे में श्रोताओं को बता दूं, खबर है कि आयकर विभाग ने 27 करोड़ रुपए के चंदे के बारे में आम आदमी पार्टी की ओर से तैयार ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ियां होने और इसके गलत होने का दावा किया है। चुनाव आयोग को सौंपी गई एक रिपोर्ट साल से ज्यादा समय से पार्टी का चंदा सूची की जांच कर रहे विभाग का कहना है कि साल 2013-14 और 14-15 के दौरान पार्टी के चंदा रिकॉर्ड में तथ्यात्मक गड़बड़ियां हैं और चंदा देने वालों से मिली असल रकम से मेल नहीं खाता।
बहुत शुक्रिया मानसी दास अखबारों की इस समीक्षा के लिए। और अब हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम विवेचना का वक्त हो चुका है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की हार का ठीकरा उस वक्त पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जनरल याहिया खान पर फोड़ा गया था। जनरल याहिया खान पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति थे और उन्होंने जनरल अयूब खान के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पद संभाला था। जनरल याहिया खान की जन्म शताब्दी पर उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर नजर डाल रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
इतनी बड़ी जंग में किसी एक महाज पर वक्ती तौर पर पीछे हटने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। इस जंग में जो हमारी कौमी बका की जंग है, आखिरी फतह हमारी ही होगी इंशाल्लाह।
ये भाषण था जनरल याहिया खां का, जो उन्होंने 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण करने के बाद पाकिस्तानी जनता को संबोधित करते हुए दिया था। 1969 में जब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खां का पाकिस्तान में विरोध बढ़ गया तो उन्होंने जनरल याहिया खां को सत्ता सौंपकर राजनीति से संन्यास ले लिया था। डिक्टेटर होते हुए भी याहिया खां ने कुछ ही दिनों के भीतर चुनाव कराने का ऐलान किया। इन चुनावों के बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के पहले साफ सुथरे चुनाव थे। 70 के दशक में पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे शंकर वाजपेयी बताते हैं।
उनके जो नीचे इलेक्शंस हुए थे वो पहले बार फ्री एंड फेयर थे, उसका नतीजा जाके मुश्किल उनको फंसाया, क्योंकि पहले बार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की वजह से मुजीब साहब की पार्टी बिल्कुल स्वीप कर गई। उसके अलावा अगर जो पुराने तरीके से होते तो काफी गड़बड़ होती थी इलेक्शंस में वहाँ। दूसरी बात है कि उसकी वजह से ऐसी पार्टियां जीती जो पाकिस्तान को फिर आखिर में तबाही कर दिया, मगर उन्होंने तो कोशिश की थी कि जो भी हो ये बिल्कुल इलेक्शंस पे कोई शक न होना चाहिए।
इस फैसले का कारण याहिया खां की भलमनसाहत थी या अनुभवहीनता? कुछ साल पहले याहिया खां के एडीसी रहे स्क्वाड्रन लीडर अरशद समी खान ने मुझे बताया था।
डिक्टेटर्स डू नॉट हैव देयर हैंड ऑन द पल्स ऑफ द नेशन फ्रैंकली। याहिया वाज लिविंग ऑन द बोरोड साइट ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज جنہوں نے کہا تھا کہ جی 33 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, الیکشن آپ فری اینڈ فیئر کراؤ تو یہ بڑی بکھری ہوئی پارلیمنٹ میں آئیں گی, آپ جس کو سپورٹ کرو گے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور پھر وہ آپ کی بات مانے گی, آپ پریزیڈنٹ رہو گے وغیرہ وغیرہ.
یحییٰ خان کی یہ بڑی ناسمجھی تھی کہ انہوں نے پاکستانی جنتا کے اس فیصلے کو سویکار نہیں کیا. شیخ مجیب گرفتار کر لیے گئے اور حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ بھارت اور پاکستان یدھ کے کگار پر آ گئے. 70 کے دشک میں پاکستان کے ودیش سچیو رہے سلطان محمد خان اپنی آتم کتھا میموئرز اینڈ ریفلیکشن آف اے پاکستانی ڈپلومیٹ میں لکھتے ہیں.
یحییٰ خان یہ وشواس کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس کا انہوں نے کوئی کارن بھی نہیں بتایا کہ بھارت پوروی پاکستان میں سینیہ ہستکشیپ کرے گا. اس سمے پاکستانی سینا کے جنرلوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ غیر لڑاکو بنگالیوں کو محج ایک چھرے کے زور پر جھکا دیں گے. اتہاس نے بعد میں سدھ کیا کہ وہ کتنے غلط تھے. اس لڑائی کے بعد پاکستان کا آکار آدھا ہو گیا. انہیں بہت شرمندگی اٹھانی پڑی اور اس مانسک آگھات سے ابھرنے میں انہیں کافی وقت لگا. ایک راشٹرپتی کے روپ میں ایک بکھری ہوئی آبادی کا نیتتو کرنے کی قابلیت ان میں نہیں تھی. انیتک راجنیتوں سے نبٹنے اور وشو راجنیتی کی جٹلتاؤں کو بھی سمجھنے کی ان کی کھمتا سیمت تھی.
13 دسمبر تک یہ بالکل اسپشٹ ہو گیا کہ پاکستان پوروی مورچے پر بری طرح سے پچھڑ رہا ہے. جب چین سے مدد کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں تو یحییٰ نے مجبوراً امریکی راشٹرپتی رچرڈ نکسن کو فون ملایا. ارشد سمیع اپنی کتاب 3 Presidents and an Aide میں لکھتے ہیں,
ہر جگہ سے پریشان ہو کر یحییٰ خان نے راشٹرپتی نکسن کو سندیش بھیجا کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. 13 دسمبر 1971 کی رات 2 بجے راشٹرپتی بھون کے ٹیلی فون آپریٹر نے مجھے فون کیا کہ راشٹرپتی نکسن ہمارے راشٹرپتی سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے انٹرکام سے یحییٰ کو جگایا. نیند میں چور یحییٰ نے فون اٹھایا. کیونکہ لائن بہت خراب تھی یحییٰ نے مجھ سے کہا کہ میں دوسری لائن پر ساری باتیں سنوں اور اگر لائن ٹوٹ جائے تو نکسن سے بات کرنا جاری رکھوں. نکسن کی باتوں کا لب و لعاب یہ تھا کہ وہ پاکستان کی سرکشا کے لیے بہت چنتت ہیں اور انہوں نے پاکستان کی مدد کے لیے 7th بیڑا بنگال کی کھاڑی میں بھیج دیا ہے. جیسے ہی نکسن نے فون رکھا یحییٰ نے مجھ سے کہا کہ میں جنرل حمید کو فون لگاؤں. جیسے ہی حمید لائن پر آئے یحییٰ لگ بھگ چلاتے ہوئے بولے, ہم وی ہیو ڈن اٹ, امریکنز آر آن دا وے.
امریکی بیڑا اگلے دن تو دور, ڈھاکہ کے گرنے تک بنگال کی کھاڑی میں نہیں پہنچا. دلچسپ بات یہ ہے کہ آزادی کے بعد فیلڈ مارشل سیم مانیک شاہ اور جنرل یحییٰ خان دونوں دلی میں سینا مکھیالے میں تعینات تھے. جنرل ایس کے سنہا اپنی آتم کتھا اس سولجر ریکالز میں لکھتے ہیں,
1947 میں مانیک شاہ اور یحییٰ خان دلی میں سینا مکھیالے میں تعینات تھے. یحییٰ خان کو مانیک شاہ کی موٹر بائک بہت پسند تھی, وہ اسے خریدنا چاہتے تھے لیکن سیم اسے بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے. یحییٰ نے جب وبھاجن کے بعد پاکستان جانے کا فیصلہ کیا تو سیم اس موٹر بائک کو یحییٰ خان کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئے. دام لگایا 1,000 روپے. یحییٰ موٹر بائک پاکستان لے گئے اور وعدہ کر گئے کہ جلد ہی پیسے بھجوا دیں گے. سالوں بیت گئے لیکن سیم کے پاس وہ چیک کبھی نہیں آیا. 1971 کی لڑائی جیتنے کے بعد سیم نے مذاق کیا, میں نے یحییٰ خان کے چیک کا 24 سالوں تک انتظار کیا لیکن وہ کبھی نہیں آیا. آخر انہوں نے 1947 میں لیا گیا ادھار اپنا آدھا دیش دے کر چکایا.
یحییٰ خان کو لیڈیز مین کہا جاتا تھا, کئی مہیلاؤں سے ان کی دوستی تھی. ملکہ ترنم نور جہاں کو وہ نوری کہہ کر پکارتے تھے اور وہ جنرل یحییٰ خان کو سرکار کہہ کر بلاتی تھی. ارشد سمیع یحییٰ اور نور جہاں سے جڑا ایک قصہ سناتے ہیں.
ایک شام تھی کہ جنرل یحییٰ کے دوست بیٹھے تھے ان کے ساتھ, میں اپنے کمرے میں جا چکا تھا تو مجھے انہوں نے سمن کیا. میں گیا, مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا, ہی یوز ٹو ریپیٹ ہمسیلف, بیٹا بیٹا بیٹا, یہ نور جہاں کا ایک نیا گانا آیا ہے, میں نے سنا ہے نور جہاں کا ایک نیا گانا آیا, میری چیچیتا میری چیچیتا, ڈو یو نو اباؤٹ اٹ؟ میں کہتی نہیں. اچھا تو یہ سارے کہتے ہیں کہ ابھی وہ گانا اتنا کم ریلیز ہوا ہے کہ شاید نہیں ملے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں, میرا اے ڈی سی جو ہے وہ لے کے آئے گا. تو خیر اب میں پٹھان ہوں اور میری وائف جو ہے وہ پنجابی ہے, تو میں اس کو یاد کرتا آ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ لفظ پہلے کبھی سنا نہیں تھا, میری چیچی دا. تو اب میں رٹا لگاتا ہوا آ رہا ہوں ان کے کمرے سے اپنے کمرے کو, اور اس طرح میں بھول گیا کیونکہ کیا تھا چیچی کے, آئی ہیڈ ٹو کال ہم لانگ ڈسٹینس مائی وائف اینڈ سیڈ
यार वो नूर जहान का कोई गाना है, कोई शेर से कोई चीज है। हाँ हाँ मेरी चीज है। अब वही बात, रात की 11 बज रहे, मैंने प्रेसिडेंसी की गाड़ी एक मंगवाई, उसमें बैठा तो बोरी बाजार है कराची में एक, मैंने कहा चलो वहां चलता हूँ सीधा। दूसरी बात है दुकानें बंद हो चुकी थी, गलियों में घूमते हुए मैं वहां पहुंच गया, नॉक किया, बाहर आए, मैंने कहा यार मैं आपका एक कस्टमर हूं पुराना, तो फरमाइए। मैंने कहा जी मुझे वो एक रिकॉर्ड चाहिए, नूर जहान का नई रिलीज है मेरी चीची दा। कि जी जरूर आइए, कल सुबह आ जाइए, आपको दे देंगे। मैं कहा नहीं भाई, मेरी बैट लगी हुई है किसी के साथ कि मैं आज और अभी लेके आऊँ। तो कहते मुझे, कहते कि सर इस वक्त? मैंने कहा जी बिल्कुल इसी वक्त। मैंने कहा मुंह मांगी कीमत दूंगा? तो समझे कि शायद ये कोई बिगड़ा हुआ नवाब है। हम उनके दुकान पे पहुंच के उन्होंने दुकान खोली, रिकॉर्ड निकाला, मुझे दिया। उस जमाने में वो रिकॉर्ड 5 रुपए का हुआ करता था, मैंने उनको 50 रुपए दिए। फिर मैं प्रेसिडेंसी में आके जब गया, प्रेसिडेंट साहब को वो रिकॉर्ड दिया, बड़े ही वाज वेरी एलेटेड, वेंट इनटू अ हुर्रा, वी हैव डन इट अगेन।
मेरी चीचीदा, ओ मेरी चीचीदा, छल्ला महिला ने कर जाके शिकायत लाऊंगी, मैनू बदो बदी पीछे पीछे लानिया कर जाके शिकायत लाऊंगी।
यह को पार्टियों में जाने का बहुत शौक था। एक बार वो राष्ट्रपति के तौर पर पूर्वी पाकिस्तान गए, वहां एक रात उन्होंने अपने एडीसी से कहा कि रात में वो बिना अपने सुरक्षा अमले को बताए एक पार्टी में जाएंगे।
यह मुझसे बोले, तुम्हें एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, किसकी तरफ से? यह बोले, खंडोकर साहब। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम यहां कौन सी कार इस्तेमाल करते हो? मैंने कहा, मर्सिडीज सर। उन्होंने कहा, आज तुम दूसरी कार मंगवाओ, ड्राइवर से कहो कि वो उसे तुम्हारे कमरे के बगल में पार्क करे, उससे कार की चाबी ले लो और उससे कहो कि अब तुम्हारी छुट्टी है। यह बोले, ठीक 9:05 पर तुम पिछले वाले वरांडे और अपनी कार की अंदर की लाइट ऑफ करोगे, 9:10 पर तुम कार का पिछला दरवाजा खोलोगे, 9:15 पर मैं कार की पिछली सीट पर आकर बैठूंगा, तुम मुझे बगल में रखी हुई चादर से कवर करोगे और ये ख्याल रखोगे कि मेरे करीने से सजाए हुए बाल न बिगड़ जाएं, दरवाजा बंद करोगे और प्रेसिडेंसी के गेट से बाहर निकलोगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी को इस बात का आभास न हो कि तुम पाकिस्तान के राष्ट्रपति को अपनी कार में ले जा रहे हो। सब कुछ योजना अनुसार हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद याहिया ने मुझसे कार रोकने के लिए कहा। वो आगे आकर मेरी बगल में बैठते हुए बोले, तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरे ड्राइवर हो। थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने कहा, पहले फूल वाले के यहाँ चलो और मिसेज खंडोकर के लिए फूल खरीदो। अपने दोस्त के घर पहुंचकर याहिया ने अपने हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई, दरवाजा खुला और खंडोकर साहब राष्ट्रपति को वहां देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह चुपके से उनके घर पहुंच जाएंगे बिना किसी सायरन और लाओ लश्कर के। याहिया बोले, कानू तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अपने भारी शरीर के बावजूद याहिया खां बहुत अच्छे डांसर थे। उस रात उन्होंने पार्टी में मौजूद हर महिला के साथ डांस किया। चूंकि वो वीकेंड था, पार्टी देर रात तक चली। बीच बीच में याहिया मुझसे पूछते रहे, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? जिस तरह मैं उन्हें लाया था उसी तरह उन्हें वापस ले गया। याहिया कार की पिछली सीट से बाहर उतरे, मुझे धन्यवाद दिया और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए।
याहिया के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हें लोगों को तोहफे देने का बहुत शौक था, लेकिन इसके लिए वो सरकारी पैसे के बजाय अपना खुद का पैसा खर्च करते थे। उनके ADC अरशद समी खां अपनी किताब में लिखते हैं,
जैसे ही याहिया राष्ट्रपति बने उन्होंने मुझे निर्देश दिए कि मैं हमेशा अपने साथ कुछ उपहार तैयार रखूं, जिन्हें वो स्थानीय और विदेशी मेहमानों को दे सकें। ये कोई नई बात नहीं थी। अयूब खां के जमाने में भी हम इस तरह के उपहारों से भरा पूरा एक ट्रंक अपने पास रखते थे। दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना होता था कि याहिया हर उपहार के लिए पैसा अपनी जेब से देते थे। एक बार बेगम याहिया की एक दोस्त ढाका से मिलने उनके पास आई। वो उनके साथ राष्ट्रपति भवन के दालान में बैठकर चाय पी रही थी। तभी याहिया गोल्फ खेलकर वापस लौटे। बेगम याहिया ने उनसे फारसी में कहा, आज मेरी दोस्त का जन्मदिन है। याहिया बोले, मैं आज आपको क्या तोहफा दे सकता हूँ? उस महिला ने बहुत सकुचाते हुए कहा, अगर आप तोहफा देने पर इतना जोर दे रहे हैं तो अपनी इस्तेमाल की हुई कोई चीज मुझे दे दीजिए। याहिया बोले, इस वक्त तो मेरे पास ये गोल्फ टी शर्ट, पैंट और जूते हैं, ये किसी महिला को नहीं दी जा सकती, एक टॉवल रुमाल भी है मेरे पास जो मेरे पसीने से भरा हुआ है। मेरे पास एक चीज है आपके लिए, आप अपनी आंखें बंद करें और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएं। उस महिला ने अपनी आंखें बंद की और झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। याहिया ने अपने हाथ से सोने की ऑयस्टर रोलेक्स घड़ी उतारी और उस महिला की कलाई में पहना दी। आंखें खोलते ही उस महिला ने विरोध करते हुए कहा, मैं तो आपसे एक रुमाल की उम्मीद कर रही थी, ये तो बहुत महंगी चीज है, आप इसे वापस ले लीजिए। याहिया हंसते हुए बोले, एक बार दिए जाने के बाद तोहफा वापस नहीं लिया जाता।
1971 की लड़ाई में एक बार जब याहिया खां के हाथ से चीजें फिसलना शुरू हुईं, तो फिर उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। उसके बाद तो पहल उनके हाथ से जाती रही और फिर उन्होंने हो रही घटनाओं पर रिएक्ट भर किया। भुट्टो को अपना पद सौंपने के बाद याहिया ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा था, गुड बाय सर, आई विश यू लक। जब वो अपने एक और साथी जनरल पीरजादा की तरफ मुड़े तो उनके मुंह से निकला, अब आप एक आजाद शख्स हैं। याहिया ने जोर का ठहाका लगाते हुए अपने बेटे अली से कहा, हाँ अली, तुम और हम अब आजाद हैं। याहिया बहुत ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रहे और अपने जीवन के अगले 5 साल उन्होंने नजरबंदी में बिताए। इस दौरान उन्हें लकवा भी मार गया। जनरल जिया ने जब भुट्टो को सत्ता से हटाया तब जाकर याहिया खां की रिहाई हो सकी। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
तो आपने विवेचना सुनी और इस विवेचना पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। और आइए अब कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, तो सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। अमेरिका में सिएटल में एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिका आने वाले लोगों पर पाबंदी लगाने वाले आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी है। अदालत का यह आदेश पूरे अमेरिका पर लागू होगा। अमेरिका ने ईरान पर हाल में किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के बाद नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत के 2 राज्यों पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान होंगे। रोमानिया में लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार उस फरमान को वापस ले जिसके तहत कुछ तरह के भ्रष्टाचार को मान्यता मिल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त का कहना है कि म्यांमार की नेता आंग सान सू ची ने वादा किया है कि वो सेना पर संयुक्त राष्ट्र के लगाए आरोपों की जांच करेंगी। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार की सेना पर अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान समुदाय के बच्चों और बड़ों के साथ सामूहिक हत्या और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप लगाए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2008 की महामंदी के बाद देश में लागू हुए सबसे प्रमुख अधिनियम की समीक्षा का हुक्म दे दिया है। डॉड फ्रैंक एक्ट ने अमरीकी बैंकों को अपने ग्राहकों की बजाय उन अपने फायदे के लिए वित्तीय बाजारों पर सट्टेबाजी करने से रोक लगा दी थी। पेरू की सरकार ने देश में रह रहे हजारों प्रवासियों को अस्थायी वीजा देना शुरू कर दिया है ताकि प्रवासी काम कर सकें या अपनी पढ़ाई कर सकें। एक अनुमान के मुताबिक वेनेजुएला में गरीब गंभीर आर्थिक संकट के बाद वहां से पेरू आए करीब 6,000 प्रवासी नई जिंदगी की उम्मीद में वहां यात्री वीजा पर रह रहे हैं। BBC समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया मानसी दास ने और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं राजेश चौहान। आपसे शाम 7:30 बजे दिन भर में फिर मुलाकात होगी। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।